वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं उस वसुदेव सुतम वसुदेव जी के पुत्र को प्रणाम करता हूं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, कंस और चाणूर का जिन्होंने वध किया। देवकी परमानंदम, देवकी को परम आनंद देने वाले कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये छोटी लघु नाटिका में आप देखने वाले हैं। केवल आप सब श्रद्धालु भक्तों की प्रसन्नता के लिए आधे घंटे के अंदर इन्होंने निश्चय किया कि एक छोटी सी लघु नाटिका करनी है। तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस छोटे से नाटक का आस्वादन करें और तत्पश्चात हम प्रवचन करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में जहां भगवान अर्जुन को अपना विश्वरूप प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शित करने के बाद अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं शंख चक्र गदा पद्म के द्वारा भूषित। तत्पश्चात अर्जुन के निवेदन करने पर भगवान अपना मूल द्विभुज रूप दिखाते हैं। तो ये सुंदर श्लोक है गीता में। श्री भगवान उवाच, सुदूरदर्शनमिदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, यानी भगवान का सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। आप सब श्रद्धालु भक्तगणों का आज के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर स्वागत है। हम आभारी हैं कि आज के शाम अपना समय निकालकर यहां आए। भगवद गीता का संदेश आज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व चाहता है कि एकता हो, लोगों में एकता हो, आपस में प्रेम हो, सब जगह शांति हो और सब आनंद से रहे, सुख और समृद्धि के साथ। यह हरेक की अभिलाषा है। पर इस भौतिक संसार का स्वरूप आज हम देखते हैं तो बहुत निरुत्साह हो जाते हैं। पर गीता यह संदेश देखता है, देता है, साफ साफ देता है, तरीका बताता है कि किस तरह से हम वो शांति, सुख और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम पूरे विश्व या पूरे ब्रह्मांड के केंद्र को नहीं जानेंगे और हमारा उनके साथ जो संबंध है इनको नहीं जानेंगे, तब तक ये नामुमकिन है कि हम सच्चे सुख, शांति और आनंद का अनुभव करें। और यही ये गीता न केवल 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण से बताया हुआ उस समय लागू था, बल्कि आज भी उतना ही लागू है। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय सदिष्कताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान उनके आविर्भाव या जन्म का कारण बताया और साथ ही साथ बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म पूर्ण रूप से दिव्य है, यानी इस संसार में जो हमारा जन्म और कर्म है ऐसे भगवान के जन्म और कर्म नहीं है। हमारे संस्थापक आचार्य श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा ये तत्व को समझाते थे। कहते थे कि अगर जेल के अंदर कोई देश का राजा प्रवेश करे, उसी देश का राजा जेल में प्रवेश करे देखने के लिए कि अगर कैदी लोग सब ठीक ठाक है क्या, उनका खाना पीना ठीक ठाक चल रहा है, तो एक कैदी दो गलतियां कर सकता है। एक कैदी सोचेगा मैं भी जेल में और राजा भी जेल में, इसका मतलब राजा भी एक मामूली कैदी जैसा व्यक्ति है। इस भौतिक संसार में हम आए स्वागत करके आए नहीं, हमें डाला गया इधर। क्यों डाला गया? भगवत धाम में थे, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की नित्य सेवा में लगे हुए थे, वहां से यहां आए क्यों? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान बनने की इच्छा और क्योंकि नहीं बन सकते भगवान से द्वेष। जब ये द्वेष उत्पन्न हो गया तो द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व में पड़ गए, ये अच्छा है ये बुरा है। भगवान की सृष्टि में कोई न बुरा है न अच्छा है, ये अच्छा और बुरा ये भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में नहीं। तो पहली गलती ये कि हम समझ रहे हैं कि भगवान भी जन्म लिए, मैं भी जन्म लिया, मेरा जन्म दिवस मनाया जाता है, आज भगवान का जन्म दिवस है, मैं भी भगवान, या भगवान भी मेरे जैसे कैदी, या भगवान मामूली हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब भगवान अवतरित होते हैं, हमारा जन्म होता है एक भौतिक माता पिता के द्वारा, पर भगवान का अवतार होता है, अव यानी उतरना और तरण यानी चलना फिरना। न माम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान जो कार्य करते हैं उस कार्य में फंसते नहीं जैसा हम फंस जाते। एक मकड़ा जो है अपना जाल बनाता है, अपने ही मुंह से जाल बनाता है, और उस जाल में चलता फिरता है, पर वो मकड़ा जाल में नहीं फंसता। दूसरे कीड़े वो मकड़े के जाल में फंस जाते बुरी तरह से, निकल नहीं पाते। इस तरह से भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, वो जब अवतरित होते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म में बंधन में नहीं फंसते वो, न मे कर्म फले स्पृहा, हम कार्य कर रहे हैं फल की इच्छा से, पर उनको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं। ये जो व्यक्ति जान जाता है वो भी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये भगवान का स्वरूप है और ये दर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं वो, अवतरण। इसीलिए यहां भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, ये जो दर्शन है, तू जो मुझे देख रहा है अपनी आंखों से, ये दूरदर्शन मतलब बहुत ही मुश्किल देखना, सुदूरदर्शन। देवता अपि अस्य देवतागण भी ऐसे स्वरूप को देख नहीं पाते। इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में एक छोटी सी कथा बताते हैं, एक प्रसंग बताते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे उस समय का एक प्रसंग, जो भागवत के प्रायशः आखिर अध्यायों में आता है। और ये प्रसंग बताता है किस तरह भगवान का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। एक बार द्वारका में ऐसा हुआ, एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। उस ब्राह्मणी का एक पुत्र हुआ। जैसे पुत्र जमीन को स्पर्श किया, नवजात शिशु तुरंत मर गया, शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण बड़े दुख के साथ उस नवजात मृत शिशु के शरीर को लेकर द्वारका के राजा महाराज उग्रसेन के दरबार में आकर द्वार पर उस मृत शरीर को रख दिया और जोर जोर से शोक विलाप करने लगा। और एक अच्छी बात कही उसने, दो श्लोक मैं पढ़ना चाहता हूं जो ये ब्राह्मण ने कहा। इस मृत शरीर को, अपने बालक के मृत शरीर को महाराज उग्रसेन के दरबार में रखकर, जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सारे यदुवंशी लोग, महारथी लोग बैठे हुए, महान क्षत्रिय वंशी लोग बैठे हुए, महान योद्धा शूरवीर, उनके सामने महाराज उग्रसेन को डांटते हुए ये ब्राह्मण दो श्लोक कहता है जो बहुत ही समझने योग्य है हम लोगों के लिए, खास करके जो इस प्रजातंत्र के प्रबंधक हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं और ऐसे स्थिति में हैं जो लोक कल्याण के लिए एक पदवी ग्रहण की है। ये ब्राह्मण कहता है, ब्रह्म द्विषः षठी धियो लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्रबंधो कर्म दोषान पंचत्वं मे गतो अर्भकः। बोले, ये मेरा पुत्र क्यों मरा? हे राजन, तुम इसके कारण हो। कहता है, मेरे पुत्र का मरने का कारण राजन तुम हो। पिछले युगों में, पिछले जमाने में किसी व्यक्ति की अगर अकाल मृत्यु हो जाए, बाप के पहले अगर बेटा मर जाए, युद्ध में मरे दूसरी बात है, बट वैसे ही अकाल मृत्यु हो जाए, एक राजा पूरे प्रजा का प्रबंधक होने के कारण अपने आप को उत्तरदायित्व मानता था उसका, कि कुछ भी अगर गलती हुई मैं जिम्मेदार हूं उसका, ना कि प्रजा को दोष दे ये लोग ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, नहीं मैं जिम्मेदार हूं उसका। तो ये ब्राह्मण कहने लगा, मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं, एक पवित्र सात्विक जीवन जी रहा हूं, अगर मेरे पुत्र का अकाल मृत्यु हो गया निश्चित रूप से राजन आप ही इसके जिम्मेदार हो। कहते हैं ब्रह्म द्विषः, और यहां बताते हैं एक आदर्श प्रबंधक का लक्षण क्या होना चाहिए, खास करके अगर देश के नेता हो बड़े राज्य के। ब्रह्म द्विषः, आप ब्रह्म के द्वेषी हो, तभी ऐसा हुआ है। शिवाजी महाराज का आप देखेंगे जो चिन्ह था उनका राज चिन्ह, उसमें गो ब्राह्मण प्रतिपालक। भगवान कौन है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्म द्विषक, ब्रह्म का मतलब है वेदों, वेदों का द्वेषी, ब्राह्मणों का द्वेषी। ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा राजा नालायक है। तो शठ यानी शैतान जैसी बुद्धि है तुम्हारी। बुद्धि तो चाहिए, कोई प्रबंधक कोई चलाने के लिए बुद्धि तो चाहिए, पर यह बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दूसरा इल्जाम, तीसरा दोष बता रहे हैं, लुब्ध यानी तुम बड़े लालची हो, प्रजा के संरक्षण के बदले तुम केवल अपना स्वार्थ देख रहे हो। जिस परिस्थिति में तुम्हें रखा गया वो तुम कर नहीं रहे हो। लुब्ध विषयात्मक, क्यों? क्योंकि भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे हुए हो। और फिर कहता है क्षत्रबंधो हो, क्षत्र यानी क्षत्रिय, क्षत्रबंधो माने क्षत्रियों के बंधु मित्र। क्षत्रिय ये शब्द का अर्थ क्या है? क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, क्षति यानी नुकसान, नुकसान से जो व्यक्ति बचाता है वो क्षत्रिय। राजा का धर्म था कि अपने प्रजा को हर एक नुकसान से बचाए। आप पूछेंगे सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी अगर आत्म साक्षात्कार किए बिना कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों जैसे अगर शरीर छोड़कर कोई मर जाए, उसने अपना मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया, सबसे बड़ा नुकसान यही है। आहार निद्रा भयमैथुनम च समन्यमेतत् पशुभिः नराणाम्, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशुभिः समानः। हम में पशु में चार चीज बराबर है, खाना आहार निद्रा सोना, वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं, भय अपने आप का संरक्षण करना वो भी करते हैं अपने पंजों से अपने दांतों से, हम करते हैं बड़े बड़े बंदूक से AK-47 से या बड़े बड़े तोप लेकर मिसाइल्स, और मैथुनम च बच्चे पैदा करना, खाना सोना बच्चे पैदा करना और अपना संरक्षण करना, ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं कृमि कीटाणु भी करते हैं। इनमें और हम में अंतर क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, एक ही चीज है, हमें बुद्धि दी गई है, इस बुद्धि के द्वारा पूछना कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, हम चाहते हैं मन की शांति, हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं आनंद, क्यों नहीं मिल रहा हमें? हम नहीं चाहते दुख, हम नहीं चाहते बुढ़ापा, हम नहीं चाहते बीमारी, हम नहीं चाहते मृत्यु क्यों हम पर थोपी जा रही है। ये बात पूछना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से पार कैसे निकलना, यह मनुष्य योनि का मुख्य उद्देश्य है। और राजा का कर्तव्य है तीन चीजों के द्वारा ये प्रजा को, चलते फिरते पशु, द्विपाद पशु, जो मनुष्य योनि प्राप्त कर भी ये जिज्ञासा नहीं करता, ये पूछताछ नहीं करता कि मैं जो चाहता हूं शांति सुख आनंद मुझे क्यों नहीं मिल रहा, जो मैं नहीं चाहता हूं बुढ़ापा बीमारी मृत्यु क्यों मुझे आ रही है, इससे क्या बाहर निकलने का तरीका है, ये प्रश्न जो पूछता है वो मनुष्य है, नहीं तो वो द्विपाद पशु, दो पैर वाला पशु है। तो ये कौन सिखाएगा? राजा का ये कर्तव्य था अपने उदाहरण से, अपने वाक्य से और अपने कार्यकलापों से पूरे प्रजा का क्षति त्रायते, मनुष्य योनि प्राप्त करके कुत्ते बिल्ली जैसा मर न जाए आदमी, तीन चीजों के द्वारा, एजुकेशन कल्चर एंड डिवोशन। सबसे पहले एजुकेशन, ये ज्ञान देना सबको। किसी ने पूछा महाराज एजुकेशन की परिभाषा बताइए हम, मैंने बोला एजुकेशन का मतलब एमएससी। बोला एमएससी क्या होता है? मास्टर ऑफ साइंस बीएससी के बाद जो होता है। बोला हां पर ये दूसरा एमएससी है, ये मास्टर ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। ये एमएससी क्या होता है? मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। मैटर यानी ये भौतिक संसार, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस तरह से ये पूरा विश्व जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी भौतिक सृष्टि है 24 तत्वों की बनी हुई है, 24 तत्वों की बनी हुई है। ये सब जड़ वस्तु है, अपने आप में इसमें चेतना नहीं है। जड़ वस्तु को जानो, पहला एम मैटर, दूसरा स्पिरिट, आत्मा को जानो, जीव को जानो जो इस मृत शरीर को जागृत करता है, जिसके चले जाने पर वही शरीर जिसको हम छोड़े बिना नहीं रह सकते, जिस शरीर में आत्मा है और हमारा वो संबंधी है, तो हम कहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूं एक क्षण भी, पर उसी आत्मा के शरीर से निकलने के बाद एक क्षण उसके साथ नहीं रह सकते, बोले जल्दी निकालो इस शरीर को। सोचने वाली बात है। आज तक कल तक हम कह रहे थे कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, और आज क्योंकि वो आत्मा उस शरीर से निकल गई, बोले तुम्हारे होते हुए मैं नहीं रह सकती, इधर जल्दी निकालो। क्या है वो जिसके रहने पर ये शरीर इतना मूल्यवान है, हमारे लिए प्राण से भी प्यारा है, और जिसके चले जाने पर ये शरीर इतना घोर स्वरूप है कि जल्द से जल्द, जब क्या है जिसके होने पर हम हाथ धोकर उसे स्पर्श करते हैं, पर जिसके चले जाने पर उस शरीर से अगर स्पर्श हुआ तो स्नान करके शुद्ध करते अपने आप को। सोचने वाली बात है। वो आत्मा है, वो सच्चिदानंद है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो शरीर के मरने पर भी नहीं मरता। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये ज्ञान नहीं है। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को ऐसा व्यवस्था बनाना कि हर एक मनुष्य उनके राजधानी में, उनके राज्य में ये ज्ञान को प्राप्त करे, और वो प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी अनुकूल व्यवस्था है उसे प्राप्त करे। दूसरा, ज्ञान तो दे दिया पर ज्ञान का अभ्यास करने के लिए अनुकूल वातावरण होनी चाहिए। अनुकूल वातावरण होनी चाहिए। जैसे अगर एक छोटा सा यहां एक बगीचा बनाइए, आप यहां एक बगीचा बनाओगे तो तोते आएंगे, अच्छे अच्छे तितलियां आएंगी वहां, बहुत सुंदर सुंदर मीठे बोलने वाले पक्षियां आके बैठेंगे। अगर वही उस बगीचे को काटकर सारे पेड़ पौधों को निकालकर सारा दुनिया का कचरा लाके वहां फेंकिए, केवल कौवे आएंगे उधर। क्यों? जैसा वातावरण वैसे लोग आएंगे। वहां एक बार एंड रेस्टोरेंट खोलोगे तो सब पियक्कड़ लोग आएंगे, वहां एक पार्क बनाओगे तो सत्वगुण वाले आएंगे, वहां एक मंदिर बनाओगे तो वहां शायद वहां धार्मिक लोग आएंगे, सत्संग करेंगे, अपने चेतना को बढ़ाएंगे। तो जो भी एक ऐसी परिस्थिति में है जो दूसरों के ऊपर असर कर सकता है, जिसका प्रभाव है, नेता मतलब केवल देश के नेता ही नहीं, माता पिता भी एक प्रकार के अपने बच्चों के लिए नेता जैसे हैं, जैसा उनका उदाहरण वैसे बच्चे करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्देवे तरोजना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो एक अनुकूल वातावरण घर में बनाना, एक अनुकूल वातावरण समाज में बनाना, एक अनुकूल वातावरण राज्य में बनाना। परीक्षित महाराज के समय में राजा तलवार लेके चलता था, लोगों को मारने के लिए नहीं। कोई भी अगर अधर्म का पालन कर रहा है तो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, राजा से उसे डरना चाहिए। राजा मर जाएगा, जीते जी कोई अधर्म का कार्य नहीं चलेगा। क्या ऐसी शक्ति है आज कोई राजा में? कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो एक अनुकूल वातावरण, एजुकेशन, कल्चर और फिर डिवोशन, भक्ति। अपने आप सुनेंगे महाराज युधिष्ठिर, महाराज रंतिदेव, महाराज शिबि, महाराज पृथु, भागवत में जितने सारे महाराजों का वर्णन है, सब के सब भगवान के शुद्ध भक्त थे। आज भी अगर आप जयपुर में जाएंगे तो महाराज के बड़े बड़े, आज भी पुराने, आप कहीं भी राज्य में जाइए, राजाओं के महल नहीं दिखेंगे आपको। बड़े बड़े मंदिर दिखेंगे पर राजाओं के महल के वो क्या बोलते हैं वो नहीं दिखेंगे आपको। क्यों? या बड़े बड़े किले दिखेंगे या बड़े बड़े मंदिर दिखेंगे, उनका महल का कहीं दिखना पत्थर भी नहीं मिलेगा। एक आदर्श था, ये राजा ऋषि है। राजा ऋषि का मतलब है अपने उदाहरण के द्वारा लोगों का सेवक समझकर उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए और बड़े सुख और समृद्धि के साथ वो आराम से आध्यात्मिक जीवन का भी सफल, भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनका वर्धक, उनका बढ़ाना, उसके लिए जो भी जरूरी है वो काम करना। तो ये ब्राह्मण कह रहा है कि आप विषय भोगी हो, आप लालची हो, आप ब्रह्म से द्वेष करते हो, भगवान से द्वेष करते हो, ब्राह्मणों से द्वेष करते हो। ब्राह्मण का मतलब 50 पैसे के धागा पहन के ब्राह्मण नहीं। कलयुग में दुर्भाग्यवश ऐसे ब्राह्मण होंगे, 50 पैसे के धागा पहन लिया तो ब्राह्मण, सिर्फ धागा दिखाया तो ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से ब्राह्मण नहीं। भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुणों के द्वारा, भले वो किसी योनि में पैदा हुआ हो, कोई भी इसमें पैदा हुआ, अगर उसके अंदर वो लक्षण है, अगर उसका कार्य ऐसा है तो उसे एक ब्राह्मण माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो केवल समाज का उद्धार करने को चाहते हो, ऐसे लोगों का संरक्षण न करे, ब्राह्मण यानी समाज का सर, अगर सर काट दिया तो हाथ को नहीं मालूम किसको मारना है मुक्का, पेट को नहीं मालूम क्या खाना है, पैर को नहीं मालूम कहां चलना है। इस शरीर को मार्गदर्शन देता है ये सर, शरीर के बारे में सोचता है, शरीर कहां जाना है वो देखता है, दृष्टिकोण, दूरदृष्टि, शरीर के वेदनाओं को सुनता है, और समझ कर उनको इलाज करता है और शरीर के भलाई के लिए जो है वो बोलता है। तो ये काम है असली शुद्ध रूप से ब्राह्मणों का। ऐसे व्यक्ति जो केवल इस समाज के नेतृत्व उनको मार्गदर्शन देने के लिए जो लोग हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण करना राजा का धर्म है। ना आप ऐसे कर रहे हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लुब्ध विषयात्मन, और ऐसे लोगों के अगर संग में रहे तो प्रजाओं का क्या होता है? बोले तीन चीज, सीदंती दरिद्राहा नित्य दुखिताहा, हमेशा दुखी रहेंगे, दरिद्र हो जाएंगे प्रजा, और हमेशा विचलित रहेंगे। पर अगर राजा सही हो तो सब सुखी रहेंगे। इस तरह से बोल के चला गया ब्राह्मण। दुर्भाग्यवश उस ब्राह्मण का दूसरा बच्चा पैदा हुआ। ब्राह्मण लाया, पैदा होते ही मर गया। तीसरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां बच्चा लगातार। हर बार वो ब्राह्मण उस मृत नवजात शिशु को लेकर आता महाराज उग्रसेन के दरबार में, दरवाजे पर रखकर जोर जोर से रोता, डांट कर जाता। और महाराज उग्रसेन के दरबार में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सारे महारथी लोग बैठे हुए, द्विवंशी क्षत्रिय, शुद्ध महान क्षत्रिय चुपचाप बैठे हुए थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। क्यों? नवा बार जब उस मृत नवजात शिशु को लाकर वो ब्राह्मण विलाप करने लगा दरबार पर खड़े हुए द्वार पर, उस समय भगवान श्री कृष्ण के बगल में अर्जुन बैठा हुआ था। अर्जुन का खून खौलने लगा ये भाषा सुनकर। अर्जुन ने कहा, क्या इस पूरे सभा में एक भी क्षत्रिय नहीं है, नाम के वास्ते भी क्षत्रिय नहीं है, जो कम से कम तलवार निकाल के जाके उस व्यक्ति के घर के सामने खड़े रहे और जो भी उस बच्चे को मार रहा है उसको बचाए? उसने वचन दिया। अर्जुन बड़े क्रोधी क्रोध में के वश में आकर, आवेश होकर उसने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अर्जुन गांडीवधारी वचन देता हूं कि अगले बार जब तुम्हारा पुत्र कोई भी पैदा होगा, उत्पन्न होगा, मैं उसका संरक्षण करूंगा, चाहे काल का भी, काल के साथ भी मैं लड़ाई करूंगा, पर तुम्हारा पुत्र मरेगा नहीं। और अगर मेरे होते हुए वो पुत्र मृत हो गया, शरीर छोड़ दिया, मैं वचन देता हूं कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, चिता जलाकर वहीं छलांग मार दूंगा। ब्राह्मण हंसने लगा, बोले हे अर्जुन, वाह, बातें तो बड़े बड़े करते हो। कृष्ण बैठे हुए हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, बलराम उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं, पूरे विश्व को धारण करने वाले, प्रद्युम्न अनिरुद्ध बैठे हुए हैं, बड़े महारथी, भगवान के ही पुत्र, ये कुछ नहीं कह रहे, ये कुछ नहीं कर सकते, और तुम कह रहे हो? अर्जुन ने थोड़ा अहंकार से कहा, कृष्ण नहीं कर रहे होंगे, बलराम, मैं न कृष्ण हूं, न मैं बलराम हूं, न मैं प्रद्युम्न हूं, न मैं अनिरुद्ध हूं, न मैं ये यदुवंशी हूं, मैं अर्जुन हूं, गांडीवधारी अर्जुन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा पुत्र अगले बार निश्चित रूप से जीवित रहेगा, अगर भी मृत हुआ पूरे ब्रह्मांड में जहां से भी उसे मैं ले आऊंगा वापस जीवित, नहीं तो मैं जलती चिता में उसी समय छलांग मारूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना आश्वासन दे रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अर्जुन द्वारका से निकला नहीं तब तक जब तक ब्राह्मण की खबर नहीं आई कि उसकी पत्नी गर्भवती है। जिस दिन वो पुत्र जन्म लेने वाला था, ब्राह्मण आया को अर्जुन को याद दिलाया, अर्जुन मालूम है तुमने वचन दिया था, बोले आ जाओ, आज मेरी पत्नी पुत्र को जन्म देने वाली है। अर्जुन तुरंत अपना गांडीव लिया। हां, और एक चीज आपको बताना भूल गया, जब ब्राह्मण उसे उत्साह रहा था, कह रहा था कि कृष्ण कुछ नहीं कर पाए, बलराम जी कुछ नहीं कर पाए, प्रद्युम्न अनिरुद्ध कुछ नहीं कर पाए, आप क्या करोगे, तो अर्जुन ने कहा मैं कृष्ण नहीं हूं, बलराम नहीं हूं, ये नहीं हूं, मैं अर्जुन गांडीवधारी हूं और मैंने इस गांडीव के साथ शिव जी के साथ युद्ध किया था जब वो मेरी परीक्षा करने के लिए एक शिकारी के रूप में आए थे और उनसे लड़कर उनको मैंने प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे अपने हाथों से पाशुपतास्त्र दिया है, तो तुम्हें अगर विश्वास नहीं है कृष्ण के ऊपर, मैंने शिवजी को प्रसन्न किया है। बोले ठीक है। तो अगले बार जब ब्राह्मण आया और अर्जुन को बताया कि अभी पुत्र उत्पन्न होने वाला है, तो अर्जुन ने गांडीव लिया और इस बार शिवजी की मंत्र पढ़ी, शिवजी को क्या बोलते हैं, उनको प्रसन्न करने हेतु मंत्र पढ़े और उनके दिए हुए उस अस्त्र को लेकर चले। सौरी गृह, जो मैटरनिटी होम, वहां खड़े हो गए और धनुष से लेकर तीर चलाकर उन्होंने एक ऐसा पिंजरा बना दिया सौरी गृह के चारों ओर, जहां कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर पाए। बच्चे को देर ले जाना तो बहुत दूर की बात। कुछ क्षणों में बच्चा पैदा हुआ, रोने का आवाज आया, जैसे ही वो पुत्र जमीन को स्पर्श किया, न केवल वो बच्चा बल्कि अर्जुन के सारे तीर भी गायब हो गए। भगवान श्री कृष्ण के महल के पास ही ये सब चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण देख के मुस्कुरा रहे थे। ब्राह्मण कहने लगा, धिक्कार है मुझ पर, मैं मूर्ख हूं कि तेरे जैसे व्यक्ति को मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया। धिक्कार है अर्जुन तुझ पर, धिक्कार है तेरे गांडी ऊपर, धिक्कार है मेरी बुद्धि पर कि तेरे उस पर जैसे व्यक्ति पर विश्वास किया जिसको कृष्ण और बलराम ही नहीं बचा पाए। अर्जुन ये सहन नहीं कर पाया। क्षत्रिय जो होता है रजोगुणी होने के कारण अपमान सहन नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, अपमान सहन नहीं कर पाएगा। भगवान गीता में कहते हैं मरणादतिरिच्यते, एक क्षत्रिय के लिए मान जिसको दिया गया है अपमान यानी मृत्यु से भी ज्यादा दर्दनाक। तुरंत अर्जुन ने कहा ठीक है, अब भी वो शिशु जहां भी हो, यमराज यमलोक में भी हो, तो वहां से मैं उसे ले आऊंगा। फिर मंत्र पढ़कर वो ध्यान पे बैठा। उनके अर्जुन के अंदर वो शक्ति थी, ध्यान करके जहां चाहे वो वहां जा सकता है। योग सिद्धि जो है जैसे कहते हैं अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आठ प्रकार के अंग हैं अष्टांग योग के। तो योग की शक्ति से एक व्यक्ति यहां से कहीं चाहे, जहां चाहे वहां सूक्ष्म शरीर के साथ जा सकता है और वापस आ सकता है, और मृत्यु के समय भी ब्रह्मरंध्र से अपने आत्मा को निकालकर जहां जाना है वहां जा सकता है। योग शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है। आठ प्रकार के सिद्धि हैं ये योग से मिलती है। अणिमा, छोटे से छोटा बन जाना, जैसे हनुमान जी के अंदर वो योग शक्ति थी, छोटे बन गए जब लंका में प्रवेश किए। महिमा, महिमा यानी अपने शरीर को इतना हल्का वजनदार बनाना कि पत्थर से भी ज्यादा वजन, पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार। हनुमान जी के पास वो भी था। एक बार भीम के अहंकार को चूर करने के लिए अपना पूंछ लेटकर बैठे हुए थे, भीम आए और बोले, ए बंदर हटा, पहचाने नहीं अपने बड़े भाई को, बोले हटा अपनी पूंछ को। बोले देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तू ही हटा ले। अर्जुन भी, भीम भी बड़े सुसंस्कृत व्यक्ति थे, लात नहीं मारते, उठाने का प्रयास किया, पूरी शक्ति डाली पर इस बंदर के पूंछ को उठा नहीं पाए। तब पैर पड़े और बोले, आप कोई महात्मा हो, कृपया अपना कौन है आप बताइए। तब हनुमान जी दर्शन दिए। तो ये सब योग सिद्धि है, पर मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इन योग सिद्धियों को प्राप्त नहीं करना। अणिमा, लघिमा, महिमा। लघिमा मतलब इतने हल्का हो जाओगे रूई के जैसे उड़ सकते हो आप। और आज भी शायद हिमालय में आपको ऐसे दो कई योगी मिल जाएंगे जिनके अंदर ये सब क्या बोलते हैं सिद्धियां हैं, पर एक भगवान के शुद्ध भक्त के अंदर ये योग सिद्धि हो या ना हो इसमें कोई अंतर नहीं है उसके लिए, क्योंकि एक भक्त का जीवन का उद्देश्य है इन योग सिद्धियों को प्राप्त नहीं करना। ये योग सिद्धियां ऐसे भी मिल जाएगी किसी को, थोड़ी तपस्या करेंगे तो मिल जाएगी। आसमान में उड़ने के लिए 50 साल तक अगर आपने योग की सिद्धि प्राप्त की और आसमान में उड़ने लगे, क्या फायदा मिला? कौवे उड़ते हैं, वो गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, उसके लिए 50 साल तपस्या। एक बार एक योगी, एक गांव का एक लड़का हिमालय चला गया योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए। 30 साल के बाद वो गांव आया, पूरे गांव वासी एकत्रित हो गए, बोले अरे अरे हमारा वो फलाना आ गया, वो व्यक्ति आ गया, वो लड़का आ गया, देखो इतना बड़ा हो गया, बड़ा योगी बन गया है। तो सब आके घेर लिए, बोले तुमने क्या सीखा भाई? बोले आज शाम को मैं आप सबको प्रदर्शन करूंगा कि 30 साल में मैंने क्या सीखा है, आज सब लोग तालाब के सामने आ जाओ। तो गांव के तालाब के सामने सब एकत्रित हो गए, सबकी आंखों के सामने उसने कहा, तुम देखोगे कि मैं क्या योग सिद्धि प्राप्त किया हूं 30 सालों में तपस्या करके। देखो सब लोग चलने लगा, चलते 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 तालाब के पास पहुंचा, फिर भी चलने लगा, पानी के ऊपर चलने लगा, तालाब को पार किया उसने, सब दंग रह गए, सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे, बोले वाह पानी के ऊपर चलता है, वाह वाह क्या अद्भुत चीज, आश्चर्य। पर वहां एक बूढ़ा बैठा हुआ था, वो हंसा, बोले तू बर्बाद किया जीवन 30 साल। बोले क्यों बर्बाद किया? पानी पे मैं चल सकता हूं। तो बोले कौन सी बड़ी बात है, मैं 50 पैसा देता हूं तो पानी को पार कर दाऊंगा, नाव वाला मेरे पाव कर पार करा देता है। तो ये 50 पैसे के लिए पार कराने के लिए 30 साल मनुष्य जीवन तूने व्यर्थ किया, बर्बाद किया? फिर लोग बोले हाँ ये तो सही बात है भाई, पानी से पार करना, अरे हवा में उड़ के जाना है तो एक एयरवे टिकट ले लो, यहां से पहुंच जाओगे दिल्ली, उसके लिए इतना तपस्या क्यों करना है 30-30, 40-40 साल केवल हवा में उड़ने के लिए? पक्षी उड़ सकते हैं, छोटे छोटे मक्खी उड़ता है। जीवन का उद्देश्य एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाना नहीं, जीवन का उद्देश्य है इस भौतिक संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हटकर भगवत धाम जाना। अर्जुन के अंदर ये सारी सिद्धियां थी, पर कभी अर्जुन ने अपने भोग के हेतु, अपने स्वार्थ के हेतु इन सिद्धियों को कभी प्रकट नहीं किया, केवल उस ब्राह्मण की सेवा के लिए उपयोग किया। यह एक भक्त का लक्षण है, उसके अंदर जो भी कला है वो केवल दूसरों भगवान की और दूसरों को भगवान की सेवा में लगाने के हेतु लगाता है, अपने स्वार्थ के लिए उन चीजों को कभी उपयोग नहीं करता। तो अर्जुन ध्यान लगाया, सीधा यमलोक गया, वो शिशु नहीं है, इंद्रलोक, चंद्रलोक, वरुण लोक, भ्रमण करते 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 जहां योगी नहीं जा सकते ब्रह्मलोक तक वो गया, वहां भी वो शिशु नहीं मिला, वापस आ गया अर्जुन। सर झुका के कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं पूरे ब्रह्मांड में आपके पुत्र को ढूंढ, मैं रसातल पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सब जगह में जाके आया, कहीं भी आपके शिशु नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूं, इसीलिए मेरे वचन के अनुसार मैं अभी तुरंत चिता में प्रवेश करूंगा। चिता तैयार की, आग लगाई और एकदम छलांग मार, मारने ही वाले थे तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन 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 एक मिनट कूदो मत भाई, ठहरो। बोले क्या हुआ? बोले किस लिए कूद रहे हो? वो बच्चे के लिए ना, चलो उसका इंतजाम करते हैं, चलो हम लोग जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा एक मिनट इधर आओ। आए, उन्होंने अपना रथ बुलवाया, रथ बुलवाकर अर्जुन को बैठाया और उनके चार घोड़े, भगवान के चार घोड़े। भगवान के संबंध में जो कुछ भी आता है वो दिव्य हो जाता है। दिव्य यानी क्या? ये जो भौतिक संसार के नियम उनके लिए लागू नहीं है। भगवान परम पवित्र हैं, भगवान के संपर्क में जैसे सूरज, सूरज इतना शुद्ध है, इतना शक्तिशाली है, अगर कोई मल मूत्र विसर्जन करता है, सूरज की किरणें अगर मल मूत्र पर भी पड़ती है तो मल मूत्र शुद्ध हो जाता है सूख कर, पर सूरज अपवित्र नहीं होता। इस तरह से यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा, भगवान की एक सृष्टि का एक अंश है सूरज, जिसके अंदर यह अचिंत्य शक्ति है, अनंत कोटि सालों से इतना शक्ति प्रदान कर रहा है पूरे ब्रह्मांड को, पर ये शक्ति कहां से आ रही है? एक छोटे से पंडाल को प्रकाशित करने के लिए कितना वाटेज पावर लगता है आप सोचिए, और वो भी सुबह जैसा नहीं है। एक क्रिकेट स्टेडियम को नाइट क्रिकेट के लिए 8 घंटे के लिए लाखों वाटेज लगते हैं पावर। एक बंबई जैसे शहर को, कोल्हापुर जैसे शहर को रात में थोड़ा प्रकाशित करने के लिए करोड़ों वाट पावर लगते हैं, फिर भी दिन में जितना प्रकाश होता है उतना रात को नहीं होता, जितना भी जितना बड़ा बड़ा सोडियम हैलोजन भी लगा दुआ। पर सूर्य की किरणें, सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट उग रहा है, न केवल एक शहर, न केवल एक प्रांत, न केवल एक राज्य, न केवल एक देश, ये पूरा पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो जाता है। और ये कितना दूर है हैलोजन लैंप? 10 फुट का होगा। अगर यहां से 1 किलोमीटर दूर ले जाओ तो दिखेगा भी नहीं हमारे लिए, प्रकाश और उष्णता तो दूर की बात, पर सूरज करोड़ों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है, करोड़ों करोड़ों मील दूर है, पर उसका प्रकाश, उसकी उष्णता पूरे ब्रह्मांड को पुष्टि करती है। कितना ईंधन चाहिए सोचिए आप, एक दिन पूरे विश्व को प्रज्वलित प्रकाशित करने के लिए कितना ईंधन चाहिए, कितने लाखों टन टन लकड़ी चाहिए, और वो लकड़ी सूरज में जल रही है कब से? करोड़ों सालों से। पर कभी पावर डाउन हुआ है? था पावर शट हुआ है? सूरज ने बोला आज भाई संडे है, आज छुट्टी है, आज मेरा दिन है। एक दिन अगर सूरज बोल दे आज पावर कट 40%, हो गया हमारा खत्म, हमारा 100% खत्म हो जाएगा। एक दिन अगर सूरज नहीं होगे बर्फीला हो जाएगा, सब मर जाएंगे। कहां से आ रही है शक्ति सूरज में? घटता क्यों नहीं है सूरज? कहां से इतना ईंधन जल रहा है? कहां से इतनी अग्नि उत्पन्न हो रही है? और ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का एक नगण्य सृष्टि है। तो फिर आप सोचिए उस भगवान में कितनी अचिंत्य शक्ति होनी चाहिए जिसकी एक छोटी सी सृष्टि जो है सूरज, वो भी आज तक उसकी शक्ति खत्म नहीं हो रही है। भगवान दिव्य है, उनके संपर्क में जो कुछ भी आता है, परम पवित्र होने के कारण भगवान के संपर्क में आने से हम भी पवित्र हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ये पुस्तक गीता, भगवत गीता, ये क्या है? ये एक दो कार्डबोर्ड हैं और कुछ पेपर हैं और कुछ इंक है, सब भौतिक चीजें हैं, है कि नहीं? इस कार्डबोर्ड और इस पेपर और इस इंक के साथ बहुत सारे फिल्म मैगजीन भी बनती हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक मैगजीन, ये मैगजीन, बहुत सारे मैगजीन बनती हैं। पर जब उसी कार्डबोर्ड, उसी पेपर और उसी इंक के साथ अगर थोड़ा सा भगवान के दिव्य शब्द जो 5000 साल भगवान ने बोला अर्जुन को, उसे अगर लिख दिया जाए तो ये पुस्तक अब ये मामूली पुस्तक नहीं है, इसके अंदर उतनी ही शक्ति है जितने भगवान में है। अगर हम सही तरीके से प्रार्थनात्मक भाव से इसे अध्ययन करें, जिस प्रकार अर्जुन शरण गया था, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि स्वाम धर्म सम्मूढ़ चेदा यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन्मे शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्न। अर्जुन को भगवान के संपर्क में गीता सुनकर मोह दूर हुआ, इस तरह से आज हम भी इस गीता को सही भावना से पढ़कर अपने मोह को दूर कर सकते हैं। ये शक्ति है, ये अब मामूली पुस्तक नहीं, ये दिव्य पुस्तक है। इसीलिए हम इसको प्रणाम करते हैं, इसे एक आसन देते हैं, क्योंकि भगवान के संपर्क में जो चीज आ जाता है वो दिव्य हो जाता है, भौतिक संसार के नियम से परे हो जाता है। तो जब भगवान ने अपने रथ को बुलाया और उस रथ पर अर्जुन को बिठाए और चार उनके घोड़े शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प एंड बहालक, ये चार घोड़े भगवान के, चार घोड़ों को बुलाए और रथ पर सवार होकर बोले, अर्जुन तैयार हो? बोले हां तैयार है, चलो। धीरे 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 सारे ब्रह्मांड के लोगों को पार करते हुए करते हुए करते हुए इस ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंच गए, जिसको आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने समझ नहीं पाया है कहां तक ये ब्रह्मांड जाता है। उसके अंत में घना अंधकार है, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती है, ऐसे ब्रह्मांड के सीमा तक पहुंच गए। सीमा तक पहुंचने के बाद घोड़े हिचकिचाने लगे अंदर घुसने के लिए, क्योंकि अंधकार है, कहां छलांग मारेंगे। तो क्या भगवान को ये घोड़ों को कुछ तकलीफ था? नहीं, जब भगवान इस संसार में आते हैं तो हमारे आप जैसे एक संसारी व्यक्ति जैसे लीला करते हैं, पर मूर्ख व्यक्ति समझता है कि क्योंकि हमारे जैसे व्यवहार कर रहे हैं तो वो हमारे जैसे ही है, नहीं, इसीलिए उनको लीला कहते हैं, ये हमारी जो है ये लीला नहीं है। ये हमारे दांत में, अगर कोई कहता है ना मैं अवतार हूं, आजकल हर एक गली में एक एक अवतार है कलयुग में, कोई कहे कि मैं अवतार हूं, देखिए उसका दांत दर्द होता है तो दूसरे अवतार के पास जाता है, डेंटिस्ट अवतार, और बोलता भैया कितनी मूर्खता है। भगवान को ऐसी मामूली चीज नहीं है कि थोड़ा ज्ञान बता लिया इसलिए भगवान बन गया। ये कलयुग है दुर्भाग्यवश कि हर एक व्यक्ति अपने आप को थोड़ा अगर आ गया तो अपने आप को भगवान समझता है, किसी चीज में से कुछ निकाल दिया तो भगवान समझता है। भगवान इतनी, इट्स नॉट सो चीप। अनंत कोटि ब्रह्मांड को निकालने वाले आप, ये छोटा सा एक एक सफरचंद निकाल दिया तो भगवान है, तो किसान निकाल सकता है? तो भगवान नर लीला कर रहे हैं, वो हिचकिचाए घोड़े, तो भगवान ने अपना सुदर्शन लिया और छोड़ दिया। सुदर्शन, इसमें इतनी शक्ति है कि इसके सामने कोई भी चीज जो अशुद्ध है टिक नहीं सकता, नष्ट कर देगा उसे। तो सुदर्शन प्रकाशित किया और वो घोड़े चलने लगे। अंधकार के बाद ब्रह्म ज्योति में पहुंचे। ब्रह्म ज्योति क्या है? प्रज्वलित प्रकाशमान स्थल, ये भगवान के अंग की कांति है, वहां पहुंचे। तत्पश्चात चलते 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 एक कारण समुद्र में पहुंचे जहां से सारे भौतिक सृष्टि निकलती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और वहां अनंत शेष दूध जैसे सफेद स्वरूप अनंत शेष का हजारों फन वाले बैठे हुए हैं, और उनकी शैया पर, शेष की शैया पर भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं। इस पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि विष्णु के द्वारा होती है। यस्य एकनिश्वसित कालमथावलंब्य, जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हवा निकलता है, कुछ गर्म हवा निकलता है, बस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पर जब भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। आप बोलोगे महाराज जी ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये कोई साइंटिफिक चीज बताओ, क्या बोल रहे हो आप, सांस छोड़े उसमें से ब्रह्मांड निकला। बोले ये सब अब तक ठीक है, पर ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। नहीं, ये कारण समुद्र जो है, जैसे आप अगर पसीना, आप अगर थोड़ा क्या बोलते हैं इसमें बैठेंगे, अगर सूर्य में बैठेंगे, तापमान सूर्य में, अगर मई में बैठेंगे रेगिस्तान में, तो पसीना छूटेगा तो कम से कम एक कप भर जाएगा, है कि नहीं, एक बाटी तो भर जाएगा कम से कम। तो भगवान का विशाल स्वरूप है, उसमें से जो निकलता है वो आधा ब्रह्मांड भर जाता है। आप बोलेंगे दिस इज टू मच, यस दिस इज टू मच, क्योंकि ही इज टू मच, इसीलिए तो भगवान है। प्रणाम किए कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरकर महाविष्णु को प्रणाम किए। ये महाविष्णु कौन है? ये महाविष्णु कृष्ण के एक विस्तृत स्वरूप है। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषोत्तम अहम भजामि, भगवान के अंश के अंश के अंश है महाविष्णु। तो फिर भगवान उनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? दिखाने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय। जब इस संसार में आते हैं तो जो भी पात्र लेते हैं उस पात्र को निभा के दिखाते हैं। एक क्षत्रिय के रूप में ब्राह्मण की कैसा सेवा करना है, जब सुदामा ब्राह्मण आए उनके मित्र, तो भगवान ने अपने आसन पर बैठाकर रुक्मिणी देवी को साथ में लेकर चरण धोए, और उस चरण के धुले हुए उस चरण धोने के बाद उसे अपने सर पर प्रक्षालन किया। इसका मतलब ये नहीं कि सुदामा भगवान से भी बड़ा देवता है, भगवान है, नहीं, एक आदर्श धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी, एक आदर्श उदाहरण दिखाते, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद महाविष्णु जिनके जिनसे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, वो गरजते हुए शब्दों में कहने लगे कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, स्वागत है आप लोगों को इस महाविष्णु लोक में। मैं बड़ी तीव्रता से आपकी राह देख रहा था, क्योंकि आप नर नारायण हो, आप इस दुनिया में अवतरित हुए हो साधुओं की रक्षा, असुरों का नाश और धर्म की स्थापना करने हेतु, और इसीलिए कृपया आप वो कार्य करने के बाद तुरंत आए। केवल आपके दर्शन हेतु मैं सारे नौ ब्राह्मण के बच्चों को उठा ले आया था। ये हैं तुम्हारे वो नौ बच्चों, नौ बच्चे, एक नौ साल का, एक आठ साल का, एक सात साल का, पूरे एक सीरीज में खड़े हुए थे सब नौ के नौ, ले जाइए। उन बच्चों को लिए, फिर से प्रणाम किया, कृष्णा और अर्जुन वापस उसी रास्ते से आ गए। आने के बाद द्वारका पहुंचे, उस ब्राह्मण को बुलाए और बोले ये आपके नौ पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मदद किया अपने वचन निभाने में। अर्जुन का एक साक्षात्कार निकला ये सब चीजों से। जब वो महाविष्णु के यहां गए हुए थे, बहुत सुंदर से मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जब वो महाविष्णु के पास गए तो उन्होंने एक दृश्य देखा महाविष्णु के दो सेवक नंद और सुनंद वहां खड़े हुए थे, उसके बगल में सुदर्शन स्वरूप एक भक्त अपने वैयक्तिक रूप में, भक्त सुदर्शन वहां खड़े हुए थे जो चक्र के रूप में हमेशा भगवान के हाथों में रहते हैं, और उसके आसपास दूसरी भी शक्तियां थी भगवान के जो एक वैयक्तिक स्वरूप के द्वारा वहां खड़ी हुई थी, श्री शक्ति, कीर्ति शक्ति, नीला शक्ति, अलग 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 शक्तियां सब खड़ी हुई थी भगवान की सेवा हेतु। और जब अर्जुन वापस आए तो उनके अंदर एक साक्षात्कार हुआ कि जो कोई भी ऐश्वर्य हम इस दुनिया में देखते हैं ये ऐश्वर्य केवल भगवान की कृपा से है। भगवान गीता में 10वें अध्याय में कहते हैं, यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश शंभवम्। देखिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में कोई भी वैभवशाली सुंदर चीज, बहुत ही अद्भुत चीज से अगर तुम आकर्षित हो रहे हो तो तुम समझ लेना वो मेरी ही शक्ति का एक छोटा सा अंश का प्रदर्शन है। हम सुंदरता से आकर्षित होते हैं कि नहीं? अगर कोई मिस कोल्हापुर यहां आ जाए और सामने बैठ जाए तो शायद मैं प्रवचन भूल के दो बार तो जरूर देखूंगा, खास करके अगर कोई बता दे कि प्रभु जी वो मिस कोल्हापुर है। कोई भी अगर सुंदर व्यक्ति दिखा कम से कम दो बार तो देखते हैं, फिर से मुड़ के देखते हैं, क्या सुंदर है। कोई अगर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति अपना शक्ति का प्रदर्शन किया आकर्षित हो जाते हैं। कोई बहुत बुद्धिमान है, जो भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर दे रहा है, बुद्धि से आकर्षित हो जाते हैं, वाह क्या बुद्धि है इसका, कुछ भी प्रश्न पूछो बता देता है। इस तरह से कोई ज्ञान के द्वारा अपना प्रभाव दिखाता है, कोई अपना ऐश्वर्य, करोड़पति अगर आ जाए, अगर कोई बिल गेट्स यहां आके बोले कि मैं प्रवचन देने वाला हूं, आपको बताता हूं कैसे करोड़ बताना चाहिए एक दिन के अंदर, तो लाखों लोग यहां आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा है। तो ऐश्वर्यस्य पैसा, जो ज्यादा पैसा है वो बड़ा आकर्षक हो जाता है लोगों के लिए। वीर्यस्य बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति। यश, अगर बहुत, अगर कोई फिल्म स्टार यहां आ जाए आज और बोले प्रवचन के बाद वो आने वाले हैं, सब वापस आके बैठ जाएंगे हमारे प्रवचन सुनने के लिए। उसके बाद फलाना कोई एक्ट्रेस आ रही है या कोई एक्टर आ रहा है। यश श्रीय, अगर बहुत सुंदर व्यक्ति कोई आ जाए तो आकर्षित हो जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य, कोई बहुत बड़ा वैरागी व्यक्ति भी आ जाए तो वैराग्य से आकर्षित हो जाते हैं। पर सचमुच में क्या किसी एक व्यक्ति के अंदर ये सारे छह गुण देख सकते हैं? कोई बहुत पैसे वाला है पर वैरागी नहीं है, कोई बहुत देखने में सुंदर है पर पैसा नहीं है उसके पास, पैसे वाला है पर शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है, शक्ति है बुद्धि नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ प्रदर्शन होता है तो आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण यानी सर्व आकर्षक, ये सारे गुण अनंत मात्रा में अनंत काल से जिसके अंदर है वो व्यक्ति है कृष्ण, सर्व आकर्षक। आकर्षयति इति कृष्ण, सबको आकर्षित करने वाले अपनी सुंदरता से, अपने ज्ञान से। कितने लोग कितने पुस्तक लिखे हैं, पर भगवान ने 1.5 घंटे के लिए ज्ञान दिया, एक प्रवचन दिया भगवत गीता अर्जुन को, 5000 साल से आज भी नंबर 1 बुक सेलर है, आज भी करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, बिकती हैं। 5000 साल से किसी का रिकॉर्ड है कोई लेखक का? उन्होंने कुछ पुस्तक लिखा हो, 5000 साल से चल रहा हो अभी। ये महिमा है भगवान की। अब चार प्रश्न है जो कोई भी पूछ सकता है। पहला प्रश्न ये आचार्य पूछते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं, अगर महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे और द्वारका में आके उस ब्राह्मण के बच्चे को ले गए, अरे द्वारका में आए थे तो सामने थोड़े और कदम चलकर दर्शन कर लेते ना भगवान का, इतना दूर आए वहां से यहां बच्चे को उठा के ले जाने के लिए, और 9 बार आके गए और थोड़ा देर वहां सामने जाकर भगवान का दर्शन तो कर लेना था, बच्चे को उठा के ले गए दर्शन नहीं कर पाए क्यों? स्वाभाविक बात है। तो आचार्य उसका उत्तर देते हैं, देखिए जब तक भगवान की कृपा जिस पर ना हो वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। जब तक भगवान की कृपा जिस पर ना हो तब तक वो भगवान का दर्शन, सामने खड़े होकर भगवान अगर आ भी जाएं स्टेज पर खड़े हो जाएं तो हम कहेंगे ये तो कोई ड्रामा का एक्टर है भाई, ये भगवान नहीं है, हम पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे जब तक उनकी कृपा नहीं हो। ये महाविष्णु जानते थे, इसीलिए कहा कि जब तक भगवान अनुमति नहीं देते तब तक हम भगवान को दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए कृपा चाहिए। दर्शन का मतलब क्या? अरे आप अगर कोई बड़े व्यक्ति को दर्शन करने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, वो आपको देखना चाहिए, आप उसको देख के क्या फायदा? समझ लीजिए आप एक बंबई में उदाहरण, बंबई का उदाहरण बताता हूं, मैं जहां रहता हूं सामने हमारा स्टेशन है रेलवे स्टेशन, हजारों भिखारी बैठे रहते उधर हमेशा, कोई ना कोई, एक भिखारी बैठा हुआ है 5-स्टार होटल के सामने और बड़े बड़े करोड़पति लोग आते जाते रहते हैं और सबका ये दर्शन कर रहा है, कोई फायदा नहीं। पर उन करोड़पति में से अगर 1 करोड़पति उसका दर्शन कर ले, यानी उसको देख ले कृपा दृष्टि से, तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। दर्शन करने का मतलब है प्रभु जब आपको देखना चाहे और वो आपका दर्शन कर ले तो आपका जीवन सफल। इसीलिए हमारे एक महान आचार्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की ऐसी सेवा करो कि वो तुम्हें देखना चाहे, और वो जब तुम्हें देखना चाहे तो फिर दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उनके दर्शन से आपको रोक सकता है। एक बार अकबर ने, बादशाह ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, यह प्रश्न अकबर बीरबल का कथा नहीं है, यह सच्ची घटना है। बीरबल से प्रश्न पूछा कि बीरबल मैं भगवान को देखना चाहता हूं, कैसे देखूं? बीरबल पहली बार उत्तर नहीं दे पाया, बोला बादशाह मैं कल बताऊंगा। पूरी रात सर खुजलाते हुए अपने कमरे में, घर में घूम रहा था, इधर से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। उसकी लड़की जो वल्लभ संप्रदाय की एक महान भक्त थे, उनकी शिष्या थी वो, बीरबल की लड़की। तो उसने पूछा कि पिताजी आप बहुत चिंतित लग रहे हो, बात क्या है? तो बीरबल ने कहा कि बेटे आज बादशाह ने एक प्रश्न पूछ लिया कि भगवान को कैसे देखा जाए, तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूं इसलिए सोच रहा हूं। तो उसकी लड़की ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, हमारे स्वामी जी से पूछ लो। बोले कहां है तुम्हारे स्वामी जी? बोले चलो ले चलती हूं। स्वामी जी के पास गए बीरबल, स्वामी जी के पूछे, स्वामी जी अकबर बादशाह पूछ रहे हैं कि भगवान को कैसे देखा जाए। स्वामी जी ने कहा एक काम करो, उसको इधर बुला, मैं दिखाता हूं उसको। नहीं 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 बादशाह, बोले बादशाह कोई भी हो, इधर आओ दिखाता हूं उसको। तो अगले दिन बीरबल गए तो अकबर ने पूछा, बीरबल भगवान को कैसा देखा जा सकता है? बोले आपको सुनना है क्या, जानना है क्या, चलो मेरे साथ, एक बड़े महात्मा है वो आपको दिखाएंगे भगवान, दर्शन कराएंगे। तो अकबर बोले कहां है ये? बोले आपको नदी पार करना पड़ेगा, चार पहाड़ पार करना पड़ेगा, एक बड़े क्या बोलते हैं विशाल जंगल है, वो जंगल में जाना पड़ेगा, उसमें एक छोटी सी कुटिया है, वो कुटिया में रहते हैं। ठीक है, तुरंत एक बड़ा पालकी बनाए, उस पर बैठ गए और सारे सेवक उनको लेकर रथ पे सवार होकर घोड़े पे बैठकर गए, नदी पार किया, पहाड़ को पार किया, चार पहाड़ों को पार किया, जंगल में घुसे, जंगल में जाकर एक छोटी सी कुटिया थी, वहां झुक कर एकदम अंदर गए और वो वहां स्वामी जी एक लंगोट पहनकर बैठे हुए, और अकबर बादशाह हाथ जोड़कर कहे कि महाराज जी भगवान को कैसे देखा जा सकता है? तो स्वामी जी ने बोला ऐसे। बोले मैं समझा नहीं, भगवान को देखा कैसा जा सकता है? बोले ऐसे। बोले नहीं नहीं माफ कीजिएगा मैं समझा नहीं, ऐसे। बोले ऐसे मतलब कैसे? बोले सुनो बादशाह, तुम तो बड़े बादशाह हो, बड़े महल में रहते हो, हजारों सेवक हैं तुम्हारे, और मैं एक दूर में एक जंगल में एक झोपड़ी में रहता हूं, एक कोपिन पहनकर रहता हूं, एक बस लंगोट पहनकर रहता हूं। अगर मैं तुम्हें देखने की इच्छा करता तो मुझे जंगल पार करना, उसके बाद पहाड़ों को पार करना, उसके बाद नदी को पार करना, न मेरे पास ऐसा कुछ वैसा संपत्ति है, ऐसा कुछ सौलभ्य नहीं है मेरे पास, और अगर भी मैं तुम्हारे महल के पास आता तो शायद तुम्हारे द्वारपाल मुझे भगा देते। बोले कौन सा कोई फकीर आया, निकलो यहां से, राजा के पास समय नहीं है तुम्हें देखने का। पर जब तुमने निर्णय किया मुझे देखने के लिए तो तुम्हारे लिए कोई तकलीफ नहीं, तुम तो आ गए। बोले इसी तरह से हम अगर भगवान को देखना चाहे, आप एक प्रधानमंत्री को देखना चाहे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पहचान नहीं है कोई अच्छा वाला, पहचान वाला होगा तो कम से कम 6 महीना लगेगा आपको, एक बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए भी इतना आसान नहीं है इस दुनिया में, छोटे मोटे तथाकथित बड़े लोग, फिर भगवान को मिलना इतना आसान है? क्या आपके नौकर हैं कि बोलते साथ भगवान मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता हूं, सचमुच में हो तो आ जाओ सामने, वाह नौकर है खड़े होके सामने, हाँ भैया तूने बुलाया मुझे, ये मूर्खता है। तो स्वामी जी का कहना था कि अगर तुम भगवान को देखना चाहो तो बहुत बड़ी परिश्रम है, पर अगर वो तुम्हें देखना चाहे तो उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की ऐसी सेवा करो कि वो तुम्हें देखना चाहे। तो आप बोलोगे तो मैं आज तो दर्शन के लिए आए तो देखूं नहीं क्या, आंख बंद करके चले जाऊं वापस? बोले नहीं, ये सेवा है, आप दर्शन के हेतु इतना समस्या इतना तकलीफ उठाकर बारिश में भी आप आ रहे हो, ये सेवा भाव है। जिस हद तक आपकी भावना सेवा की है, भोग करने की नहीं, उस हद तक आपको इस श्री विग्रह में भी भगवान दिखेंगे, नहीं तो भगवान भी खड़े हो जाएंगे तो आप बोलेंगे ड्रामा का एक्टर है, भगवान नहीं है। ये पहला प्रश्न का उत्तर कि महाविष्णु जैसे व्यक्ति भी जब तक भगवान की अनुमति नहीं है तब तक भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, और इसीलिए वो सातों ब्राह्मणों के बच्चों, नौवे ब्राह्मणों के बच्चों को ले गए ताकि भगवान आए और उनको जब ले जाने के लिए आएंगे तो उनका दर्शन होगा। प्रश्न नंबर 2, अगर महाविष्णु को मालूम था कि अगर हम भगवान को दर्शन करना चाहते हैं तो मैं द्वारका भी जाऊंगा तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो वो खुद क्यों आए द्वारका में? भगवान है, उनके करोड़ों सेवक है, कोई एक सेवक को भेज देते, बोले वो ब्राह्मण के बच्चे को उठा के ले आ,
क्या उनके लिए नामुमकिन था? उठा के ले जा सकता है। अरे आज कोई किसी को पैसे दे दो, किसी का बच्चा को उठा के ले आएगा, भगवान के लिए क्या तकलीफ? तो फिर वैयक्तिक रूप से वो क्यों आए महाविष्णु? आचार्य उसके उदाहरण में कहते हैं, उसके समझाने के लिए कहते हैं कि द्वारका के निवासी सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और उनको अगर कुछ तकलीफ देना है, कोई मामूली व्यक्ति उनको तकलीफ दे ही नहीं सकता, केवल भगवान ही उनके विस्तृत रूप से आके अगर ले जाएंगे तो ठीक है, कोई दूसरा आता कुछ बाल भांका नहीं कर पाता कोई द्वारका वासियों का। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, अगर भगवान किसी की संरक्षण करना चाहते हैं तो उसे कौन बाल भांका कर सकता है, और भगवान किसी को मारना चाहे तो कितना भी वरदान प्राप्त कर ले, हिरण्यकशिपु कितना तपस्या किया था, कितना वरदान प्राप्त किया था, पर भगवान उसे मारना चाहे तो फाड़ दिए उसे। प्रहलाद, हिरण्यकशिपु अपनी पूरी ताकत से देवताओं जिसको देख के डरते थे मारने का प्रयास किया, प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि भगवान उनकी संरक्षण करने के निर्धारण ले चुके थे। तीसरा प्रश्न, हम सुनते हैं कि भगवान नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, केवल दर्शन करने के लिए एक ब्राह्मण को इतना तकलीफ, 9 साल तक बेचारा एक एक बच्चे को भी मार डालना, उठा के ले जाना, रोना 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 धोना, आप सोचिए उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कितना तकलीफ हुआ होगा। भगवान होकर, ब्राह्मण के हितैषी होकर एक ब्राह्मण को 9 साल तक इतना पीड़ा देना, ये शोभा नहीं देता भगवान को, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो उसके उत्तर में आचार्य कहते हैं, महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के इतने लालायित थे, इतने उत्सुक थे कि उन्होंने कहा कि भले भगवान के दर्शन के लिए कुछ ब्राह्मण को कुछ समय के लिए ये पीड़ा देना पड़े, मैं देने के लिए तैयार, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं भगवान का दर्शन करने के लिए। इसमें हमें एक चीज सीखना चाहिए, कितनी उत्सुकता होनी चाहिए। तत्रापि लौल्यम एकलम मूल्यम, भगवान के दर्शन उस व्यक्ति को होता है जिसके हृदय में तीव्र उत्सुकता हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जगन्नाथपुरी में निवास करते थे और हर रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, और हमेशा भगवान जगन्नाथ जी के सामने गरुड़ स्तंभ है, उस गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर वहां वहां से दर्शन किया करते थे जगन्नाथ जी का। चैतन्य महाप्रभु 7 फुट लंबे थे। एक बार एक वृद्ध स्त्री तीव्र आतुरता, हजारों लोग खड़े रहते जगन्नाथपुरी में, दर्शन की लालायत से वो इतनी पागल सी हो गई, उसने देखा नहीं कि कौन है सामने, तुरंत महाप्रभु के कंधे के ऊपर चढ़ गई। कैसे चढ़ गई भगवान जाने, जब आदमी उत्सुक होता है, बड़ा तीव्रता होता है उसके अंदर, क्या कर बैठता है बाद में उसे भी नहीं मालूम, पीछे मुड़ के देखता है, बोले ऐसा मैंने कैसा किया। चढ़ गई भगवान के कंधे पे चढ़कर, चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे चढ़कर दर्शन कर रही है, तो महाप्रभु का जो सेवक था उसने कहा, ए मूर्ख उतर, क्या कर रही है, नहीं समझती है, ये सन्यासी है, इनके कंधे के ऊपर चढ़ रही है, बेशर्म कहेगी, उतर। महाप्रभु ने तुरंत अपने सेवक को डांटा, बोला तू आदिवासी है, वो नहीं, तू आदिवासी है, तू ऐसे व्यवहार कर रहा है, देखो उसे सीखो, क्या तीव्रता है, क्या उत्सुकता है दर्शन के, कि कोई उसके सामने कुछ बाधा नहीं हो सकती, कोई भी चीज करने के लिए तैयार है, कहीं मतलब उस पागलपन में वो ये भी नहीं जानती कि क्या कर रही है, किसके ऊपर चढ़ रही है, कहां, दर्शन की इतनी लालायत। बोले काश, महाप्रभु कह रहे हैं, काश मेरे हृदय में भगवान के दर्शन के हेतु ऐसी तीव्रता या ऐसी उत्सुकता हो। तो रूप गोस्वामी कहते हैं एक महान आचार्य कि ये उत्सुकता जब हृदय में होगी तब भगवान नजर आएंगे। और चौथा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो प्रश्न ये है, अगर महाविष्णु भगवान को देखने नहीं सकते जब तक उनकी अनुमति ना हो, तो भगवान को यहां से वहां जाकर उन बच्चों को लाने का क्या जरूरत था? खड़े खड़े ऑर्डर देते तो हो जाता, क्यों उतना दूर क्यों जाना? ब्रह्मांड को पार करके, ब्रह्म ज्योति को पार करके उस महाविष्णु लोक में क्यों जाना? मन से सोचते तो हो जाता। उसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महान आचार्य कहते हैं कि उस ब्राह्मण के बच्चों को बचाने के लिए भगवान नहीं गए। अगर ब्राह्मणों को बच्चों को बचाना था तो जब पहला बच्चा मर गया उसी समय जाके ले आते। नौ बच्चे मरने तक महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण नहीं गए। कब गए? जब अर्जुन जलती चिता पर छलांग मारने का प्रयास किया। भगवान गीता में कहते हैं, कौंतेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान अपने भक्तों के वचन को कभी गलत साबित करने नहीं देंगे। अपना वचन चले जाए पर भक्तों के मुख से निकली हुई वचन को गलत साबित नहीं कर सकते। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि अगर ये बच्चे वापस मैं नहीं ला के दूंगा तो जलती चिता में छलांग मारूंगा। अर्जुन के वचन को सत्य साबित करने के लिए भगवान कुछ भी करेंगे। भक्त के वचनों को सत्य साबित करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद बेटे तू हमेशा कहता है कि भगवान सब जगह है, इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा, क्यों नहीं पिताजी, कहां नहीं है भगवान, यहां भी हैं, इस खंबे में हैं। जैसे हमारे अभी चाण और मुष्टिक हंसे, ऐसे ठहाका मारकर कंस हंसा और कहा, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए पूरे इतिहास में, हमेशा के लिए लोगों के लिए मैं साबित कर दूंगा, इस खंबे को तोड़कर दिखा दूंगा कि तेरे भगवान नहीं है। प्रहलाद ने कहा, भगवान कोई ऐसे जगह नहीं है जहां नहीं है, निश्चित रूप से खंबे में भी है। नारद मुनि कहते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त के मुख से निकले हुए वचन को पूर्ण करने के लिए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषः। स्तंभ एक खंबे से निकला है, न मृगम न मानुषः, आधे मृग और आधे नर। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, दूसरे स्वरूप में क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके दूसरे भक्त ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई नर नहीं मार सकता, कोई मृग नहीं मार सकता, मेरी सृष्टि के 84 लाख योनियों में कोई नहीं मार सकता तुझे। तो उस वचन को भी पूर्ण करने के लिए, प्रहलाद के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान उस खंबे से निकले। तो आप कहेंगे, तो ठीक है, आज के जन्माष्टमी के उत्सव पर क्या संदेश है इसमें से, मुझे मैं क्या समझूं? भगवान को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, भगवान की मन की इच्छा को जानना बड़ा मुश्किल है। पर जिस व्यक्ति ने भक्ति के द्वारा अपने हृदय में भगवान को बांध के रखा हो, उसके मुख से निकले हुए जो वचन है, उन वचनों के आधार पर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से भगवान नकार नहीं सकते।
कल का दिन हम एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने वाले हैं इस मंदिर में। हमारे संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनकी कृपा से आज पूरे विश्व भर में गीता का संदेश, जो केवल भारत में उपलब्ध था, पूरे विश्व भर में प्रचार होकर सैकड़ों लाखों लोग पूर्ण रूप से भगवान की शरण जा रहे हैं। कल उनका आविर्भाव तिथि या जन्म दिवस है। उन्होंने एक वचन दी कि अगर आप कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, उस नाम को ग्रहण करोगे, उस नाम का उच्चारण करोगे, हरर नाम एव केवलम, तो ये तीन चीज जो भगवान क्यों प्रकट हुए, तीन चीज करने के लिए है कि नहीं, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का दमन करने के लिए, नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामी युगे युगे, युगे युगे मतलब हर युग में यानी कलयुग में भी। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। अगर हम श्रद्धा पूर्वक, तीव्रता के साथ, उत्सुकता के साथ, ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो वो नाम के अंदर उतनी शक्ति है कि विनाशाय च दुष्कृताम, हमारे हृदय में जो आसुरी प्रवृत्ति है, देखिए पहले जमाने में देवतागण दूसरे लोकों में रहते थे, असुर लोग दूसरे लोकों में रहते थे, अलग अलग। त्रेता युग में एक ही ग्रह पे असुर और सुर एक ही ग्रह पे पर अलग अलग खंडों में रहते थे। कहां रावण था, कहां समझ, लंका में, और हनुमान जी थे इधर किष्किंधा में। द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए, मामा कंस और भांजा कृष्ण एक ही परिवार में, यदुकुल में। पर कलयुग में कहा जाता है एक ही हृदय के अंदर दोनों बैठे हुए, आसुरिक प्रवृत्ति भी हमारे अंदर है, दैवी प्रवृत्ति भी हमारे अंदर है, पर दुर्भाग्यवश ज्ञान न होने के कारण, अच्छी संस्कृति न होने के कारण, भक्ति का कोई सत्संग न होने के कारण ये दैवी प्रकृति अब सुप्त अवस्था में है और आसुरिक प्रवृत्ति बड़ी बढ़ गई है। पर जब हरि नाम लेते हैं तो कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर वहीं प्रकट हो जाते हैं हमारे हृदय में। चक्र और गदा असुरों का वध करने के लिए और शंख और पद्म भक्तों को वरदान देने के लिए। तो नाम के रूप में जब अपने हृदय में हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रकट होते हैं हमारे हृदय में जिह्वा के द्वारा, तब जैसे जैसे नाम लेते जाएंगे आप देखेंगे आपके अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, धीरे 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 नष्ट होता जाएगा, घटता जाएगा, इसका प्रभाव कम होता जाएगा, ये चीजें आपके नियंत्रण में आ जाएगी। और परित्राणाय साधु नाम, ये जो अच्छे गुण है, सुर जैसे गुण, ये गुण दया समदृष्टि बहुत अलग अलग सारे अच्छे गुण, देवताओं में भी होने वाले अच्छे गुण अपने आप धीरे धीरे आपके हृदय में प्रकट होने लगेंगे। आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये कैसे गुण ये प्रकट हो रहे हैं। एक शिकारी नारद मुनि के कहने पर
पशुओं को आधा मारकर रखने वाला 6 महीने के अंदर एक चींटी को मारने भी हिचकिचाने लगा। ये बुद्धि कहां से आ गई, ये दया भाव कहां से, ये करुणा कहां से आ गया, ये समदृष्टि कहां से आ गया कि सबके अंदर आत्मा है, किसी को तकलीफ ना देना चाहिए। कैसे आ गया ये? हरिनाम के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा। तीसरा, धर्म संस्थापनार्थाय। आप सिर्फ हरिनाम लेना शुरू करो, तुरंत आपको समझेगा ये मैं गलत कर रहा हूं, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक चीज है, ये मुझे करनी चाहिए। कहां से ज्ञान आया? अंदर से आया। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, उन्हीं से ज्ञान, विस्मृति और स्मृति, तीनों उन्हीं से आती है। तो प्रभुपाद जी ने हमें बताया, गुरु परंपरा में आए हुए वही भगवान के वचन कहते हैं कि आप इतना करो, एक नित्य हर रोज हरि का नाम लो। खास करके कलि संतरण उपनिषद, जो कलियुग के लिए लिखा गया है, वहां एक महामंत्र बताया गया है, मंत्र मनस्त्रायते इति मंत्र। मंत्र का मतलब क्या? मन यानी मन, और त्र यानी तरण, मतलब मन को तारना। किस चीज से? भौतिक चीजों में फंसा हुआ यह मन, वहां से निकालकर भगवान के चरण कमलों में रखने का तरीका है मंत्र जप। और वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये 16 शब्द का नाम कलि कलमश नाशनम, सारे कलि के कलमशों को नष्ट कर देगा। ना तो परतर पायो सर्व वेदेश दृश्यते, सारे वेदों में ढूंढने पर भी ये आपको नहीं मिलेगा। ऐसा सार, सारे शास्त्रों का सार। दूसरी चीज उन्होंने कहा, एक सरल जीवन जियो, डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ, बी सिंपल। एक सरल जीवन जियो, सरलता लाइए अपनी भाषा में, अपने दिनचर्या में, अपने रहन सहन में, अपने बोलचाल में, अपने जीवन में सरलता लाइए। और तीसरा, एक शुद्ध जीवन जीइए, निष्पाप जीवन, नशा व्यभिचार जुआ मांसाहार। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक शुद्ध जीवन, एक सरल जीवन जीते हुए अगर हरिनाम लेने लगे, केवल समय की बात है, असुरों का नाश, भक्तों की समृद्धि, भक्ति की समृद्धि, और धर्म क्या है अधर्म क्या है इस चीज का ज्ञान अपने आप आपको होने लगेगा। क्योंकि ये भक्त की वचन है, भक्तों का वचन है, जो शास्त्र के आधार पर है, इसके भी इस पर विश्वास रखकर अगर हम अग्रसर होंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तब हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट होंगे, तब वो जन्माष्टमी होगा, तब ये जन्माष्टमी साल में एक दिन न होकर हर दिन होगा, हमारे हृदय में हर क्षण होगा, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संपर्क हमेशा के लिए बन जाएगा। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं जैसा सुना हूं वो दोहरा रहा हूं। प्रभुपाद जी भी कहते थे, मैं एक पोस्टमैन हूं, पोस्टमैन अगर आपको 1 लाख का चेक दिया तो उसके पैर नहीं पड़ोगे, उसको बोलेंगे धन्यवाद, आपके बिना मेरा जीवन क्या होता। अरे नहीं, आपके पिता ने भेजा है, पोस्टमैन सिर्फ ला के दे रहा है। एक सदगुरु जो है वो एक पोस्टमैन जैसा है, भगवान के वचनों को, परम पिता के वचनों को, जैसी आहे तशी यथारूप लाकर आपको प्रस्तुत करता है कि ये करो और आपका जीवन सफल होगा। तो इस तरह से सचमुच में आज का दिन बहुत ही पुण्य, बहुत ही मंगलमय दिवस है आज, कृष्ण के जन्म का दिवस। ये 5000 साल पहले कंस के जेल में नहीं हुआ था, हुआ था पर आज भी हो सकता है हमारे हृदय के जेल में, जो बड़े बड़े काम क्रोध मोह के जो बार लगे हुए हैं, जिसमें से हम बाहर निकल नहीं पा रहे, जब कृष्ण प्रकट होंगे तो बंधन खोल जाएंगे, सारे जेल के सलाखे टूट जाएंगे और हमारी मुक्ति होगी भक्ति के द्वारा। तब ये कार्यक्रम हमारा सफल होगा, नहीं तो फिर आया राम गया राम। आए काय केला, बघितला खूप चांगली आहे तुमचा, आणि काय दर्शन घेतला, आणि काय प्रसाद घेतला, आणि काय गेलो। एक सामाजिक एक मनोरंजन नाही आहे, बल्कि एक करोड़ों का चेक दे रहे भगवान आपको अपने जन्मदिवस पर। साधारणतः किसी के जन्मदिवस पर जाते हैं हम लोग, उनको उपहार देते हैं, पर भगवान सबको बुलाकर फ्री में एक चेक दे रहे हैं, करोड़ों का चेक दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? बोले हरिनाम लो, हरिनाम लो, ये करोड़ों का चेक है, आप ऐश्वर्यशाली बन जाओगे, सुख समृद्धि शांति आनंद अनुभव करोगे। ये एक ऐसा पासवर्ड है जिसको दबाओ तो आपके पूरे फाइल खोल जाएंगे भगवत धाम के। ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे हृदय के करोड़ों जन्मों का पाप को निकालकर शुद्ध भक्ति को वापस स्थापित करने की शक्ति रखने वाली है। तो सचमुच में आज का जीवन, आज का दिन, आज का ये आपका जो यहां विजिट, क्या बोलते हैं, यहां आना, यशस्वी तब होगा जब आप यहां से जाते वक्त ये एक संदेश आपके हृदय में रख के जाइए कि कृष्ण जन्म न केवल 5000 साल पहले हुआ था, कृष्ण जन्म आज हमारे हृदय में हो सकता है। अगर कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, उनको आमंत्रित कीजिए, अपने हृदय में स्वागत कीजिए। कैसे? भक्तों के संग में आकर। यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त श्रद्धालु भक्तगण एकत्रित होकर मेरा नाम लेते हैं वहां मैं प्रकट होता हूं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा अभी 10 मिनट के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे। ये संकीर्तन यज्ञ है, यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। क्या आहुति देनी है? हमारी चेतना की। तो कृपया बड़े ध्यान पूर्वक इस हरिनाम को आप सुनिए, और सुनने के बाद जब आप उच्चारण करेंगे तो जिस तरह द्रौपदी ने, आपने देखा होगा हमारे भक्त जब हम हरिनाम लेते हैं तो दोनों हाथ उठाते हैं। पहले मैं बहुत हिचकिचाता था, पहले बार जब मैं इस संस्था में आया तो सब बोले हरे हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ क्यों उठाना? बोले नहीं नहीं नहीं, देखो निस्सहाय भाव को प्रकट करता है। जब द्रौपदी का निर्वस्त्र हो रहा था तो बेचारी कहां कहां, वो किधर गई, भीष्म पितामह के पास गई, द्रोणाचार्य कृपाचार्य पांडवों के पास गई, सब सर झुका के बैठे हुए थे, निस्सहाय थे। तब उसने कहा दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मैं आपकी शरण आ गई। निस्सहाय भाव से जब पुकारा उसने, तब कहा जाता है 10,000 गज के बल वाला दुशासन 10 गज की साड़ी नहीं उतार पाया। इसी तरह से हमारी परिस्थिति भी द्रौपदी के समान है। निर्वस्त्र हो जा रहे हैं हम लोग, किस रूप से? काल के रूप में दुशासन हमें निर्वस्त्र करने वाला है। हम निर्वस्त्र अवस्था में इस संसार में आए, निर्वस्त्र अवस्था में जाने वाले हैं। हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त मतलब एक गज साड़ी निकल गया, एक साल एक साड़ी निकल गया, एक गज साड़ी, और मृत्यु यानी पूरा शरीर निकल गया, पूरा मतलब साड़ी निकल गया, बस नंगे चले गए। वो मृत्यु आने से पहले अगर एक बार भी निस्सहाय भाव से, दोनों हाथ उठाना मतलब निस्सहाय, टोटली निस्सहाय, देखिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, प्रभु आप मदद कीजिए, ये भावना से अगर हरिनाम लेंगे तब भगवान हमारे जीवन में एक ऐसी चमत्कार करेंगे कि दुशासन जैसे माया की शक्ति हमें निर्वस्त्र नहीं कर पाएगी। इसी शरीर के अंत में हम भगवत धाम जाएंगे। ये मौत जो सबको आने वाली है, निर्वस्त्र करने के बजाय भगवत धाम में प्रवेश दिलाएगी हमें। ये इसका मतलब है दोनों हाथ उठाने का। और बोले कौन नहीं उठा सकता हाथ। मैं एक बार हाथ उठाने में 6 महीना आया मैं इस संस्था में, पर हाथ नहीं उठाता था। कीर्तन करते थे तो मैं भाग जाता था, बोले ये सब हाथ उठाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो एक बार एक प्रवचनकार ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने बोला कौन व्यक्ति भगवान के कीर्तन में हाथ नहीं उठाता है। मैं बोला ये भाई क्या बोलने वाला ये। बोला पापी व्यक्ति नहीं उठाएगा, जिसके हृदय में पाप ही पाप, किलो किलो भर के पाप भरा हो वो हाथ नहीं उठाएगा। अगर आप समझ लीजिए 50 किलो का एक वजन इस हाथ में लिए, 50 किलो का इधर हाथ लिए और बोले उठा हाथ, वो कैसे उठाएगा। बोले जिसके हृदय पाप से भर गया है उसका हाथ उठेगा नहीं। मैं बोला वाह तू मेरे को पापी समझता है, अभी उठाता हूं देख हाथ। फिर बोला नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। ये साधु लोग बड़े चालू होते हैं, उल्टा सीधा कुछ बोल के हाथ उठा देते हैं, नहीं उठाऊंगा कुछ भी हो, पापी हूं ठीक है, पाप से भरा घड़ा हूं ठीक है, घड़े को पकड़ के रखूंगा हाथ नहीं उठाऊंगा। फिर उन्होंने कहा और कौन हाथ नहीं उठाएगा। बोले जो भगवान का ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या करता है। बोले आप अगर रावण के पास जाकर बोलो जय श्री राम तो रावण थोड़ी उठाने वाला, क्योंकि रावण जो है राम बनना चाहता है, सीता का भोग करना चाहता है। तो आसुरिक व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है भगवान से वो केवल हाथ नहीं उठाएगा हरि नाम। तो बोले चलिए अभी हम कीर्तन करेंगे, सब उठ के खड़े हो गए। मैं पीछे जाके खड़ा हो गया, बोला नहीं थोड़ा सोचूंगा मैं। और जब कीर्तन शुरू हो गया सब भक्त लोग हाथ उठा के हरे कृष्ण जप रहे थे। मैं बोला क्या सचमुच में मैं पापी हूं, मैं तो अपने आप को बड़ा महात्मा समझता था। फिर बोला क्या ईर्ष्यालु हूं मैं, क्या भगवान से मैं द्वेष करता हूं, नहीं मेरे को तो भगवान अच्छे लगते, फिर हाथ क्यों नहीं उठ रहा है। बोले एक बार तो कंफर्म कर लूं मेरे हृदय में कम से कम कि मैं द्वेषी नहीं हूं। तो मैं बोला कोई देख नहीं रहा है, थोड़ा हाथ उठाऊंगा कंफर्म करने के लिए कि सचमुच में मैं पाप का घड़ा तो नहीं हूं, द्वेषी तो नहीं हूं। तो मैंने थोड़ा ऐसे उठाया, फिर शर्म आई आंख बंद कर ली, हरे कृष्ण कृष्ण। फिर मैं बोला अगर इतना उठाया तो एक बार कम से कम पूरा उठा लो ना, पूरा निकल जाएगा। एक बार उठाया, 6 महीने से भक्त लोग मुझे देख रहे थे कि ये हाथ उठाता क्यों नहीं है, शर्माता क्यों है। मैं शर्म के मारे आंख बंद करके हाथ उठाया, जैसे हाथ उठाया पीछे से एक व्यक्ति ने मुझे धक्का देके भक्तों के बीच में डाल दिया और सब नाच रहे थे, और पता नहीं कैसे मैं भी नाचने लगा। और एक ऐसा एक क्योंकि मतलब प्रामाणिकता से उस समय कम से कम एक बार मैं बोला नहीं है, करना है तो एक बार प्रामाणिक से करेंगे, निस्सहाय भाव से, श्रद्धा भाव से, तीव्रता के साथ जैसे उन्होंने कहा, मैं बोला करेंगे चलो एक बार। एक ऐसा अनुभव भगवान ने फ्री इंस्टॉलमेंट में दे दिया मुझे, एक ऐसा अनुभव जो आज तक फिर से मुझे लव मिला नहीं। क्योंकि पहली बार कोई अच्छा सेल्समैन होता है ना फ्री सैंपल देता है, फ्री सैंपल देने के बाद और चाहिए, बोले अभी पैसा भरो। तो भगवान भी थोड़ा फ्री बेस्ट सेल्समैन है, वो पहला बार जब तुम हाथ उठाओगे तो फ्री सैंपल देंगे और बाद में बोलेंगे अभी भक्ति करो, फिर से हमेशा के लिए चाहिए तो थोड़ा भक्ति करो, हर रोज हरि नाम लो, हर रोज प्रार्थना करो। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज के पवित्र दिवस, ये दिन बड़ा पवित्र है जन्माष्टमी का, और उसमें पवित्र स्थान मंदिर का प्रांगण, उसमें पवित्र भक्तों का संग, वैष्णवों का संग, और उसमें पवित्र नाम का सेवन। देखिए कितना पवित्र हो गया, दिन बड़ा पवित्र, स्थान बड़ा पवित्र, वातावरण बड़ा पवित्र और नाम बड़ा पवित्र। इतने पवित्र एक साथ होंगे तो थोड़ा तो स्पर्श होगा भाई हमारे हृदय में, कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ तो पवित्रता आएगी, कुछ तो शुद्धता आएगी, कुछ तो मैल दूर हो जाएगा। पर ये उस हद तक होगा जिस हद तक हमारे अंदर श्रद्धा पूर्वक लेंगे, निस्सहाय भाव से लेंगे, ध्यान पूर्वक लेंगे। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है 10 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, अगर आपको शर्म आ रहा है तो आंख बंद कर लीजिए, मैं आंख बंद कर लूंगा, आप भी कर लीजिए, कोई देखेगा नहीं आपको। पर एक चीज है, जब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहा हूं तो कृपया आप दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण को अपने हृदय में स्वागत कीजिए, और मेरे बाद जब आप उसे दोहराएंगे तो कृपया दोनों हाथ उठाकर निस्सहाय भावना, जितना हो सके उतना, सचमुच में हम निस्सहाय, किसको कब मृत्यु आ सकती है, कब किसको लकवा लग जाएगा, किसको हाथ उठाने भी नहीं होगा बाद में, अभी तो उठा सकते कम से कम, बुढ़ापे में क्या होगा क्या मालूम, अभी उठा सकते तो कम से कम उठाइए। तो बड़े तीव्रता से कीजिए, 10 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे, उसके बाद कृपया सब लोग प्रसाद निश्चित रूप से ग्रहण कीजिएगा, दर्शन कीजिएगा, दर्शन लीजिएगा, और भगवान भी आपको दर्शन देने तब तक प्रेम से प्रार्थना कीजिए, और तत्पश्चात हमारे बहुत सारे प्रदर्शन हैं, कृष्ण तत्व प्रदर्शन और पुनर्जन्म के बारे में कुछ क्या बोलते हैं, छोटे से एक चलन चित्र भी है, वो भी दर्शन कीजिए, और तत्पश्चात हमारा हर रविवार को यहाँ सुंदर कार्यक्रम होता है, आमंत्रण है आपके लिए, कृपया आते रहिए, कुछ अच्छे चीज खाने के बाद, साल में एक बार नहीं खाते हम लोग, बार बार खाओ, हजार बार खाओ, आइए और जरूर इसका आस्वादन कीजिए। धन्यवाद, हरे कृष्ण। अभी मैं सब भक्तों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 10 मिनट के लिए हम कीर्तन करेंगे। जब मैं कहूंगा तो कृपया हाथ जोड़कर अपने कानों के द्वारा कृष्ण को अपने हृदय में प्रवेश करने दीजिए, और जब आप कीर्तन करेंगे तो कृपया दोनों हाथ उठाकर निस्सहाय भाव से, तीव्रता से, ध्यान पूर्वक हरिनाम का आश्रय लीजिए, जिह्वा के द्वारा उच्चारण करके।